नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पेट्रोलियम पदार्थों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए राजस्थान सहित कई राज्यों में छापेमारी और औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के जयपुर किशनगढ़ खंड को 6 लेन बनाने के लिए 910 करोड़ 90 लाख रुपए की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सरकार का प्रयास प्रदेश को स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में देशभर में अग्रणी बनाना है और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत रद्द की। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने में राज्य सरकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार छापेमारी और औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। सुश्री शर्मा ने बताया कि राजस्थान सहित कई राज्यों में औचक निरीक्षण और छापेमारी की कार्यवाही की है।
बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर स्टेट और ऑयल मार्केटिंग कंपनी की ज्वाइंट टीम्स फॉर्म की गई है और उन्होंने भी इंस्पेक्शन और रेड की है। जैसे कि महाराष्ट्र और राजस्थान में ज्वाइंट टीम्स ने सरप्राइज इंस्पेक्शंस और रेड की है। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो इंस्पेक्शन सरप्राइज इंस्पेक्शन टीम्स हैं उनको भी एक्टिवेट किया गया है और लगभग 1300 सरप्राइज इंस्पेक्शंस एट वेरियस एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप एंड रिटेल आउटलेट्स हैव बीन कंडक्टेड यस्टरडे।
केंद्र सरकार ने जयपुर और अजमेर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के जयपुर किशनगढ़ खंड को 6 लेन बनाने के लिए 910 करोड़ 90 लाख रुपए की मंजूरी दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि लगभग 90 किलोमीटर लंबे इस सड़क मार्ग पर फ्लाईओवर और सर्विस रोड का निर्माण भी किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद जयपुर से किशनगढ़ के बीच यात्रा का समय 2 घंटे से घटकर मात्र 1 घंटा रह जाएगा। नए निर्माण से स्थानीय यातायात अलग होगा और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से नए राजस्थान के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार प्रदेश के हर वर्ग के समावेशी विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आज जयपुर के भांकरोटा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। उन्होंने बताया कि सरकार 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी क्षेत्रों में रोजगार देने के वादे को पूरा कर रही है, जिसके तहत अब तक 1.25 लाख से अधिक नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार जल और बिजली सहित हर क्षेत्र के विकास के लिए विस्तृत रोडमैप बनाकर काम कर रही है।
राजस्थान में हर जिले में हमने पानी के लिए काम किया है। आने वाले समय में राजस्थान में किसी भी प्रदेश से कम पानी नहीं होगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दूसरी आवश्यकता बिजली की थी, लगातार बिजली के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। हमने 2 साल के अंदर 8,261 मेगावाट बिजली पैदा की है। उद्योगपतियों से कहा कि हम आपको 2027 में 24 घंटे पूरी बिजली देंगे। कस्टमर से कहा कि आपको भी घरेलू बिजली 24 घंटे देंगे।
राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने जयपुर के अल्बर्ट हॉल से प्रदेशव्यापी स्वच्छता संकल्प और जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने खुद श्रमदान कर प्रदेशवासियों को साफ सफाई का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास राजस्थान को स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देशभर में अग्रणी बनाना है। श्री शर्मा ने बताया कि प्रदेश के लगभग सभी गांव ODF+ घोषित किए जा जा चुके हैं और राजस्थान स्वच्छता ही सेवा अभियान में देश में पहले स्थान पर रहा है। एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की बधाई देते हुए राज्य के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऐतिहासिक भूमिका को याद किया।
राजस्थान स्थापना दिवस के कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुए हैं। ये उत्सव केवल एक तारीख का उत्सव नहीं है, ये राजस्थान की आत्मा की और उसकी संस्कृति का और गौरवशाली इतिहास का उत्सव है। इसलिए मैं आपको राजस्थान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि राजस्थान की स्थापना लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता अथक प्रयास के फलस्वरूप 30 मार्च 1949 के शुभ अवसर पर हुई थी। इस वर्ष 19 मार्च को ये गौरवशाली दिवस पूरे राजस्थान में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया है। श्री वांगचुक पिछले करीब 170 दिनों से जोधपुर जेल में बंद थे। उन्हें 24 सितंबर 2025 को लद्दाख प्रशासन द्वारा हिरासत में लिया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनकी हिरासत समाप्त करने का फैसला किया है। सरकार की ओर से आज एक औपचारिक बयान जारी कर कहा गया कि इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का वातावरण तैयार करना है ताकि सभी हितधारकों के साथ सार्थक संवाद सुगम हो सके। सरकार ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में जारी विरोध प्रदर्शनों से पर्यटन व्यवसाय और छात्रों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। उम्मीद है कि अब उच्चाधिकार समिति और अन्य मंचों के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं का सकारात्मक समाधान निकाला जा सकेगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि देश अब एक नई सांस्कृतिक जागृति के दौर में प्रवेश कर रहा है और भारत अपनी विरासत को फिर से स्थापित करने के लिए तैयार है। आज जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में आयोजित भारत की विश्व विरासत राजस्थान प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री शेखावत ने देश की प्राचीन पांडुलिपि परम्परा का जिक्र करते हुए कहा कि हजारों वर्षों से विद्वानों ने ताड़पत्रों, भोजपत्रों और रेशमी कपड़ों पर ज्ञान को संजोया है। उन्होंने इन पांडुलिपियों को भारत की अनमोल बौद्धिक निधि बताया।
भारत का अवैभव था, वो चाहे बौद्धिक होगा, चाहे स्थापत्य का होगा, ज्ञान और विज्ञान का होगा, संस्कृति का होगा और आर्थिक हो, उस वैभव के चलते हुए भारत एक कौतूहल का केंद्र सदियों सदियों तक दुनिया के लिए बना रहा। 5000 साल पहले अधिकांश देश, अधिकांश सभ्यताएं, जब विश्व के लोग इस तरह का प्रयास कर रहे थे, तब इस देश में जो है देश के आर्यभट्ट जैसे विचारक 2500 साल पहले खगोल शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे, भरत मुनि जैसे महान वो रचयिता उस समय नाट्य शास्त्र की रचना कर रहे थे।
डीग जिले के किसानों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत आधुनिक उद्यानिकी तकनीक और प्रसंस्करण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुम्हेर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के 100 से अधिक प्रगतिशील किसान आधुनिक खेती के गुर सीख रहे हैं। उद्यानिकी विभाग के सहायक निदेशक पप्पू यादव ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान किसानों को उन्नत बागवानी के साथ साथ सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी जा रही है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को नई तकनीकों से जोड़कर उनकी उपज और आय में बढ़ोतरी करना है।
ग्रीन हाउस, पोल हाउस के लिए वर्तमान में 70% सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। सौर ऊर्जा पंप के लिए 60% सब्सिडी, इसके अलावा हमारा मिनी फवारा ड्रिप, इसके लिए 70 और लघु सीमांत किसानों के लिए 75% सब्सिडी दी जा रही है। तो किसान अपनी परंपरागत तरीके से खेती छोड़ करके नवीन तकनीक के माध्यम से उद्यानिकी फसलों की करके अपना आय बढ़ा सकते हैं। मेरा अनुरोध है सभी किसान भाइयों से कि ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करके राज्य सरकार की अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ उठाएं।
सिरोही के दशहरा मैदान में जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से अमृता हाट मेला लगाया गया है। राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने इस मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद राज्य मंत्री ने विभिन्न स्टॉल्स पर जाकर उत्पादों का अवलोकन किया और महिला स्वयं सहायता समूहों का उत्साहवर्धन किया। इस मेले का उद्देश्य महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। वहीं पाली के रामलीला मैदान में जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग द्वारा संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। 15 मार्च तक चलने वाले इस मेले का मुख्य उद्देश्य आयुष पद्धतियों को बढ़ावा देना और पारंपरिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है। मेले में आयुर्वेद, योग, यूनानी और होम्योपैथी के विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क परामर्श और दवाइयां दी जा रही हैं। और अब मौसम। राज्य के कई हिस्सों में बादल छाने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। चूरू, अलवर और पिलानी सहित कई शहरों में पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आया है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बाड़मेर में 39.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जबकि शेखावाटी अंचल में ये 35 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने कल जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग सहित 18 जिलों में आंधी और बूंदाबांदी की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 19 से 21 मार्च के बीच राज्य में एक बार फिर आंधी और बारिश का दौर चलने का पूर्वानुमान है। विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहेंगे। वे यहां आयोजित जौहर श्रद्धांजलि समारोह और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेट्रोलियम पदार्थों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए राजस्थान सहित कई राज्यों में छापेमारी और औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के जयपुर किशनगढ़ खंड को 6 लेन बनाने के लिए 910 करोड़ 90 लाख रुपए की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, सरकार का प्रयास प्रदेश को स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में देश भर में अग्रणी बनाना है। और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत रद्द की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।